धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयवियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसावनं मुनिसुवय देशयरं पणनीय मुनिसुवयं जिनं देवं शङ्कममनोगमिनं जहासुहं वन्नयिष्यामो
आचार्य श्री नेमिचंद आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 योगद्वारों की चर्चा चल रही है उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार को देखते हुए अनुभाग संक्रम के प्रकरण में हम पृष्ठ संख्या 407 पर आ गए। सोलवी पुस्तक पेज नंबर 407। देखो यहाँ वृद्धि का प्रकरण चल रहा था। पहले हमने रेगुलर अनुभाग का संक्रमण समझते ना, यानी अनुभाग बढ़ना या घटना या पर प्रकृति रूप होना, उसको अनुभाग का संक्रमण कहा था। अब वो उत्कृष्ट कहाँ होता है, जघन्य कहाँ होता है, उसकी सब चर्चा चली अपने। उसके बाद भुजगार अल्पतर अवक्तव्य अवस्थित उसकी चर्चा की। भुजगार में तो केवल बढ़ता है घटता है इस तरह से हम देखते थे, परंतु जो बढ़ता है वृद्धि होती है तो उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि जघन्य वृद्धि जघन्य हानि उसकी चर्चा पद निक्षेप अधिकार में की। उसके बाद वृद्धि का अधिकार है, तो जो वृद्धि हुई है वो कैसे हुई है, यानी अनंतवा भाग बढ़कर हुई है कि असंख्यातवा भाग बढ़कर हुई है कि संख्यातवा, तो 6 प्रकार की वृद्धि और हानि संभव है। तो उसके बारे में अभी यहाँ वृद्धि के वृद्धि संक्रम में हो, केवल अनुभाग के बंध में नहीं लेना है, संक्रम में, क्योंकि बंध भी जघन्य हुआ और सत्ता में अगर उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है तो उत्कृष्ट संक्रम ही होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ संक्रम की बात चल रही है। तो वृद्धि संक्रम में फिर हमने एक जीव की अपेक्षा उसका स्वामी कौन है, काल कौन है, अंतर क्या है वगैरह वगैरह देखी थी। अब यह बात हो रही थी नाना जीवों की अपेक्षा, तो नाना जीवों की अपेक्षा डायरेक्ट अभी उन्होंने अल्प बहुत्व का प्रकरण ले लिया है, यानी भंग विषय काल अंतर समझ लेना इस करके छोड़ दिया। उसके बाद अल्प बहुत्व का प्रकरण कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 407 पर, उसमें कितने जीव है, वो हानिया वृद्धि करने वाले जीव कितने होते हैं, यानी वो संक्रामक कितने हैं उसकी बात चल रही थी। तो ये कोई पर्टिकुलर बंध स्थान है मान लेते, तो कोई पर्टिकुलर बंध स्थान है तो उसकी अपेक्षा यहाँ मैं पढ़ती हूँ और यहाँ पर पाठ्य पर बताती हूँ। देखो ये बीच वाला पैराग्राफ है ना अल्पभूत्व प्रकरण, उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने पहले कोई रूल बताया था। एक बंध स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण घात नहीं, इसका अनुभाग का घात करके असंख्यात लोक प्रमाण दूसरे स्थान तैयार होते हैं, उसको घात स्थान कहेंगे। यहाँ 5 प्रकार की हानियों को सिद्ध करके समाप्त कर, यानी पहले कितने वो तो अल्प बहुत्व में, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ नीचे लिखे हैं, तो उसका अर्थ होता है कि अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, यहाँ तक रुके। ये तो 5 स्थान नीचे बताए, तो इसमें उन्होंने अल्प बहुत्व पहले बताया। देखो अभी मति ज्ञानावरण के लिए 4 लाइन से बताया है, अनंत भाग हानि के संक्रामक स्तोक है, यानी कोई पर्टिकुलर बंध होने के बाद उसका अनंत भागहानि करने वाले जो जीव है वो कम है। असंख्यात भागहानि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। किससे? ये नंबर वन से नंबर टू असंख्यात गुणे हैं। एक का अर्थ क्या है? ये बंधस्थान के अनंत भाग हानि करने वाले जीव संक्रामक, खाली हानि करने वाले नहीं, उतनी संक्रामक है। अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव कम है, उससे असंख्यात भाग हानि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। अब तीन नंबर पर संख्यात भाग वो उससे संख्यात गुणा है, और संख्यात गुणा हानि वाले उससे भी संख्यात गुणा है, फिर असंख्यात गुणा हानि के संक्रामक उससे असंख्यात गुणा है। अब ये पांच के बाद ये बंधस्थान के ऊपर चलना, ये पांच यहां नंबर दें। अनंत भाग हानि को हमने यहां नहीं लिया, अनंत गुणा हानि को, उसका नंबर बाद में आएगा। अब ऊपर की ओर चले तो अनंत भाग वृद्धि का सं, यहां जो हमने पांच देखा था असंख्यात गुणा हानि, उससे भी अनंत भाग वृद्धि करने वाले जीव ज्यादा है। वो कितने हैं? तो देखो, अनंत भाग वृद्धि के असंख्यात गुणे, उनसे असंख्यात गुणे। अभी ऊपर ही ऊपर वृद्धि वाले ही देखना, फिर असंख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक उससे भी असंख्यात गुणे हैं, फिर संख्यात भाग वृद्धि संक्रामक उससे संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुण वृद्धि उससे संख्यात गुण है, असंख्यात गुण वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, और अनंत गुण। अभी नीचे आना, देखो ये बंधस्थान से पहले पांच स्थान नीचे बताए, फिर पांच छह सात आठ नौ दस ऊपर बताए, अब ग्यारहवा वाला है अनंत गुणा हानि वाला नीचे बताएंगे, वो उससे असंख्यात गुणा है, और फिर ऊपर जाना अनंत गुण वृद्धि उससे भी असंख्यात गुणा। अब जो अवस्थित है वो इनसे संख्यात गुणे हैं। इस तरह हमने ये कल अल्पभूतव दिखा, और इसी तरह अन्य भी जो प्रकृतियां हैं, कौन से? अन्य चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय असातावेदनीय, अनादिक नाम कर्म। अनादिक का अर्थ होता है, देखो कोई है विद्वलने वाली प्रकृतियां, तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है और फिर चालू हो जाती है, उसको सादी सत्व वाली प्रकृतियां कहेंगे। और ये अनादि वाली है, वो पड़ी रहती सत्ता में, बनती रहती कभी कभी, यानी जैसे एक इंद्रिय जाती है, द्विंद्रिय जाती है, तीनद्रिय जाती है, पंचेंद्रिय जाती है, इनका तो कभी उद्वेल न होने वाली नहीं, जब जाके क्षय होगा तब जाके नष्ट होगी, यानी अनादि से इनकी सत्ता पड़ी है। बाकी उद्वेलना वाली जो है ना, देवगति है, नरक गति है, उसके वैकृत शरीर अंगोपांग है, मनुष्य गति है, उच्च गोत्र है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम जीवों पर करें क्या? जरा आना इधर, मुझे निकाल के देना फोन, वो दे रहे। नहीं नहीं ऐसा ही रखो। अच्छा हो गया। हाँ इधर इधर दबा। पर देखते करके नाम बाद में डालेंगे उसको। हाँ अभी हम 407 पेज पर देख रहे थे। पुस्तक 16 पेज नंबर 407। अभी नीचे की लाइन वहां से हम पढ़ेंगे, इसमें भी शायद बीच में डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। 16 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। अभी इसमें अनंतानुबंधी में अवक्तव्य कब होगा? विसंयोजना के बाद, जब संयोजना करेगा तब। और बाकी कषाय 9 कषाय में कब? उपशमना के बाद, फिर नीचे आएगा, उपशम श्रेणी से उतरेगा। हाँ, यानी जब उपशम होता है तो सर्व प्रकार का उपशम होता है, इसको सर्वोपशमना कहते हैं। दर्शन मोनी का ऐसा उपशम नहीं होता, उपशम होने पर भी संक्रमण चलता रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व से सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति होती रहती है इवन 11वें गुणस्थान में। यहाँ एक बार उपशमना हुई तो पूरी उपशमना होती है, इसलिए श्रेणी से उतरते समय फिर वो सादी हो जाता है, उसका संक्रमण सादी चालू हो जाता है, क्योंकि सत्ता पड़ी है फिर भी संक्रमण रुक गया था। अब श्रेणी से उतरने पर फिर उसका संक्रमण चालू हो जाता है, यानी उपशमना बंद हो जाती है उसकी, इसलिए उसमें अवक्तव्य लिए। तो 16 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। फिर अनंत भाग हानि संक्रामक अनंत गुणे हैं, क्योंकि अनंत भाग हानि करने वाले कितने, वो तो सारे एक इंद्रिय के ले लेना है। मति ज्ञानावरण में क्या लिया था हमने? डायरेक्ट अनंत भाग हानि वाले स्तोक है, वो स्तोक है, वो भी अनंत थे, परंतु स्तोक से शुरुआत किया था, यानी वहां अवक्तव्य नहीं था। ज्ञानावरण में अवक्तव्य संक्रामक नहीं होता है, ख्याल में आई बात? हाँ। तो इसलिए आगे का अल्पभूत वैसा ही होगा। अब आते 408 पेज पर, मनुष्य गति, मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र की प्ररूपणा 9 कषायों के समान है, क्योंकि इनमें भी अवक्तव्य हो गए वो सबसे कम। हाँ, उद्वेलना के बाद संयोजना करने वाले जो कहेंगे, उद्वेलना के बाद यानी वो पहले नंबर पर अवक्तव्य लेना, फिर अनंत भाग हानि लेना। अब देवगति, देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी, नरक गति, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक बंधन, वैक्रियक संघात के, उच्च गोत्र के बाद में बताएंगे, मनुष्य उसके साथ उच्च गोत्र बता दिया ना, उसकी भी उद्वेलना होती है, अवक्तव्य वाले स्तोक है। नहीं नहीं, उच्च गोत्र की उद्वेलना की है। हाँ, उद्वेलना करने वाले कौन है? अग्नि का एक वायु है, अब वो अन्य तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, निज गोत्र तो था, अन्य तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ तो उसने उच्च गोत्र बांधा। उदय निज गोत्र का है, बंध करने पर सत्ता में आ गए ना उच्च गोत्र। हाँ, क्योंकि बंध के बिना वो मनुष्य में और अन्यत्र जाएगा भी नहीं, पहले वो नियम से तिर्यंच में ही उत्पन्न होगा निज गोत्र के साथ, अभी उसके सत्ता में उच्च गोत्र नहीं है। अग्नि का एक वायु का एक ने उद्वेलना की, अब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय कहीं पर भी उत्पन्न होगा वो, और वहां जाके वो मनुष्य गति और उच्च गोत्र बांधेगा, तब उसकी सत्ता में उच्च गोत्र आ गया, और आवली के बाद उसका संक्रमण भी चालू हो जाएगा। अब देखो, मनुष्य गति का करने वाले जो स्तोक है ना, और बाद में वो अनंत भाग वाले अनंत गुणा है वगैरह वगैरह जो कह दिया है, वैसे यहां पर भी होगी, क्योंकि मनुष्य गति बांधने वाले तो अनंत जीव हो गए, एक इंद्रियों में तो बनती रहती है। अब यहाँ देवगति की बात है, तो देवगति के अभी हमने जो नाम सब पढ़े ना, देवद्विक, नरकद्विक, फिर वैक्रिक, चार, अभी इनके पहले नंबर पर असंख्यात भाग हानि संक्रामक स्तोक है। क्या लिखा है यहाँ पर? मनुष्य गति से ये कोई डिफरेंस है तो अलग से बता रहे हैं ना, अवक्तव्य का नंबर आगे आएगा 10 नंबर पर, पहले असंख्यात भाग हानि संक्रामक स्तोक है, फिर संख्यात भाग हानि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुणहानि संक्रामक संख्यात गुणे हैं, फिर असंख्यात गुणहानि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अनंत भाग वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, असंख्यात भाग वृद्धि संक्रामक, पहले अनंत भाग वृद्धि लिया, फिर असंख्यात भाग वृद्धि लिया असंख्यात गुणे हैं, फिर संख्यात भाग वृद्धि संक्रामक संख्यात गुणे हैं। जीव करते रहते हैं वृद्धि यहन, हाँ देखो देखो हानि कब होगी, अनुभाग कांडक घात होने पर, अनुभाग के घात होने पर। वृद्धि कब होगी, नए बंध के साथ उत्कर्षण होता है तो वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि करने वाले हानि करने वाले कितने जीव है उनकी संख्या में यह अल्पभूतव चल रहा है। देखो नौ नंबर पर असंख्यात गुण वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। अभी दस नंबर पर इसको अवक्तव्य को लिया, अवक्तव्य संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, यानी अवक्तव्य करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो देव और नार की जब भी एक इंद्रिय में जाएंगे, ये देव और नार के नहीं, मनुष्य और तिर्यंच भी जिन्होंने देवगति नरगति बांधी हुई है वो एक इंद्रिय में जाते ही उद्वेलना चालू ही हो जाती है। अनंत गुणहानि संक्रामक उससे असंख्यात गुणे हैं, अनंत गुण वृद्धि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, फिर अनंत भाग हानि संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। ये अनंत भाग हानि वाले सबसे लास्ट लिया, जबकि अन्य प्रकृति में इसको पहले नंबर पर लेते हैं, ज्ञानावरण में अनंत भाग हानि वाले को पहले लिया था। अभी इसमें तो क्या, हमें तो केवल थोड़ा जानना है और थोड़ा उसमें समझना है कि कहाँ क्या कम ज्यादा। अनंत गुणहानि कहीं पर भी हो सकती है, हाँ, क्योंकि उसका घात करने वाले को, परंतु एक इंद्रिय में इतना घात होगा क्योंकि देवगति के इतना बड़ा घात तो एक इंद्रिय में जाके हो गया ना, अनुभाग कांडक होते रहते वहां पर।
सभी मिलके जीव असंख्याती हो गए,
हाँ, देवगति और नरकगति में असंख्यात जीव होते हैं। हाँ, फिर आपका प्रश्न,
यहाँ पे जो ये वृद्धि और हानि बताई हुई वो भी असंख्यात जीवों में ही होगी, क्योंकि देवगति और उसका बंध पंचेंद्रिय करते हैं।
हाँ, पर वो जीव एक इंद्रिय में गए हैं और वहाँ उद्वेलना चल रही है, उद्वेलना करने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है, तो ये इतने बांध कर वहाँ जाने वाले अनेक जीव हो सकते हैं उतने काल में।
पर वो कितना अनंत पे हो जाएगा,
यहाँ तो अनंत गुणा कहीं लिखा नहीं है, फिर भी वो स्तोक में कितना किसको लेना ये भी प्रश्न है ना। मूल में जिसको स्तोक कहा उसका प्रमाण यहाँ प्रमाण वाला अनुभव या भागा भाग वाली बात बताई नहीं है,
प्रमाण वाली
केवल अल्प बहुत वाली है, तो मूल में कितनी संख्या है वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। अनंत जो भी करेंगे ना, क्योंकि एक इंद्रिय में जाने पर वो तो सारे ही एक इंद्रिय करते हैं उसको, और एक इंद्रिय में जाने वाले भी बहुत जीव हो गए, देवगति को बांधा है, जो जो पंचेंद्रिय वो तो देवगति को निरगति को नियम से बांधेगा, और वो जब एक इंद्रिय में जाते हैं और एक इंद्रिय में गए है पर एट ए टाइम असंख्यात जीव ही जाएंगे, परंतु संचय की अपेक्षा उनकी संख्या अनंत हो जाएगी, ये हो सकता है ना। यानी हम अपनी ओर से नहीं उसको कुछ प्रमाण बता सकते एग्जैक्टली। देख अवश्य संक्रामक असंख्यात गुण, इस प्रकार वृद्धि संक्रम समाप्त तो हुआ। अभी यहां तक बात समझ में आई, अभी आगे देखते। देखो संक्रम स्थानों की प्ररूपना सत्कर्म स्थानों के समान है, उसका अर्थ क्या है, हाँ क्योंकि सत्ता में है तो उसका संक्रमण होगा, तो सत्ता के स्थान जो जो है सत्कर्म स्थानों के समान है। तो संक्रम स्थानों की अपेक्षा, यानी संक्रम स्थानों का अर्थ क्या है,
कितना
संक्रम, वृद्धि का प्रकरण समाप्त हुआ। बंध स्थान किसको कहते हैं, यानी कितनी प्रकृतियां बनती उसको बंद स्थान कहा। उदय स्थान किसको कहा? जितनी प्रकृतियां उदय में आती है। सत्व स्थान किसको कहेंगे? जितने प्रकृतियों की सत्ता है। अब बोलो ज्ञानावरण में कितने सत्व स्थान हो गए? एक होगा, पांच प्रकृतियों का। दर्शनावरण में नौ का एक, छह का है। एक्चुअली सत्ता की अपेक्षा चार हो जाएगी। देखो पहले में पहले नौ प्रकृति थी, जब नौवे गुणस्थान में क्षय हुआ तीन का, तब जाके छह हुई, और फिर बारहवें के उपांत समय में यानी दो आवली के पहले उसका संक्रमण रुक जाता है। दो आवली प्लस आवली का असंख्यात भाग निद्रा प्रचला का संक्रमण रुक जाता है, फिर भी वहां एक आवली तक तो चार का रहेगा ना। देखो पहले गुणस्थान से नौ का था, फिर छह का हुआ, फिर चार का हुआ, तीन हो जाएगी।
एक ही समय के लिए चार का होगा ना, उपांत समय में?
एक समय के लिए नहीं, एक आवली और आवली का असंख्यात भाग के लिए। निद्रा और प्रजला का दो आवली और आवली का असंख्यात भाग है, वहां पर उसका संक्रमण रुक जाता है, तो वहां उसका जघन्य देखा था, है ना। ये तो दर्शनावरण के हो गए। अब गोत्र के कितने हो गए? गोत्र कर्म के दो का और एक का। देखो देखो पहले तो उच्च गोत्र निज गोत्र दोनों ही सत्ता में थे, तो दोनों का चल रहा है। फिर अकेला उच्च गोत्र की उद्वेल न हो जाने पर नीच गोत्र का हो रहा है। चल में ना, एक या दो वाले दो स्थान हो गए। अंतराय में पांचों का एक स्थान है, साता असाता में भी दोनों के स्थान है। और अभी नाम कर्म में और मोहनी में देखना है। कौन सा आसान है वो बताओ पहले। अभी माइक ले लो अभी हाथ में, हाँ, और स्लोली स्लोली बता लो।
मोहनी कर्म में
मोहनी का संक्रमण सत्ता में है, तो संक्रमण चलता रहता है ना। हाँ,
पहले 26 का एक स्थान होगा।
26 का स्थान में मिथ्यात्व द्विगुण स्थान में मिथ्यात्व का संक्रमण क्या होगा? अनुभाग का बढ़ना रुकना इस तरह से। हाँ, सत्ता है तो हो जाएगा, अनुभाग में तो हो जाएगा, स्थिति की बात
हो जाएगा।
हाँ,
पीछे 26 का 28 का हुआ,
28 का हुआ। हाँ,
पीछे 28 में से 27 का हुआ,
27 की सत्ता वाला होता है,
पीछे 26 का हुआ।
अभी 26 का बता दिया, एक बार बता दिया कहाँ कहाँ होता है वो सब, उसको
25 का हो जाएगा।
25 का कब होगा?
16 और 9 सत्ता में पड़ा है ना, 16 और नहीं, पीछे अनंत अनुबंधी मिक्सर योजना हो जाएगी। 4
16 और 9 का कब होगा? 25 का कब होगा?
जब ही दर्शन मौली की स्वप्न हो गई हो, तो दर्शन मौली की स्वप्न होगी तो अनंत अनुबंधी भी निकल जाएगा।
देखो 28 के बाद वो 24 का हो सकता है, अनंत अनुबंधी की विसर्जना की, तो 24 का हो जाएगा। और अनंत अनुबंधी की विसर्जना के बाद मिथ्यात्व की क्षपणा होती है, तो 23 का हो जाएगा। फिर समय मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी हुई तो 22 का हो गया,
21 का हो गया।
और क्षायिक समय दृष्टि होने पर 21 का हो गया।
21 के बाद 8 का हो जाएगा, 8 कम करना पड़ेगा,
8 कषाय गए, 13 रह गए
पीछे। नहीं नहीं, पुरुष वेद, अरे नपुंसक
स्त्री वेद, नपुंसक वेद जाता है,
नपुंसक वेद पहले जाएगा, पीछे स्त्री वेद जाएगा, पीछे पुरुष वेद 10 का हो गया।
पुरुष वेद के पहले 6 नौकषाय जाएंगे,
13 पीछे 12 11 के बाद 5 का हो जाएगा,
5 4 3 2 1।
इक्कीस हो गए।
आप बंध स्थान बता रहे?
अच्छा, यहाँ क्या है?
देखो देखो मिथ्या तो गुणस्थान में 22 का बंध था, तीसरे चौथे वाले को 17 का बंध था।
बंध की बात नहीं है, देखो यहाँ तो एक एक कषाय की चोकड़ी हटती है ना। आपने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करा के उसको हटा दिया,
24 किया। फिर दर्शन यानी क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला तो दर्शन मुनि का भी क्षय करेगा, तो मिथ्या तो गया तो 23 हुआ, समय मिथ्यात्व तो गया तो 22 हुआ, सम्यक प्रकृति गई तो 21 हुआ। यहाँ तो क्रम से आ गए। 21 में से पहले नष्ट होने वाले, सत्ता में से नष्ट होने वाले 8 अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उसका पहले क्षय हो जाता है। हाँ,
अच्छा,
वो 8 एकदम जाते हैं, तो 21 में से 13 हो जाते हैं, क्योंकि 13 में फिर अंतर करता है, उपशम श्रेणी वाला 21 में अंतर करता था, सत्ता में सभी पड़ी थी। यहाँ पहले वो 16 प्रकृतियां नाम कर्म स्थान वृद्धि वगैरह और फिर ये 8 कषाय से अलग अलग 16 और 8 का क्षय होने के बाद अंतर करेगा, फिर एक एक को क्षय करेगा, नपुसक वेद का, स्त्री वेद का, फिर 6-9 कषाय और पुरुष वेद का, इसलिए बाद में करता है क्योंकि नवक बंध है ना उसका, इसलिए उसको बाद में कहना। फिर क्रोध मान माया, फिर लोभ का तो 10वें के अंत तक चलेगा, समझ में ना। ये मोहिनी के स्थान कहलाएंगे, सत्व के स्थान। अभी नाम कर्म के सत्व के स्थान बताना है। हाँ, प्रकृति टोटल 93 होती है,
मिथ्या तो हमें 33 निकाल के 90 देगी।
अच्छा, मिथ्या तो क्योंकि आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर, ये तीन अगर हम 122 का हिसाब लगाएंगे, नहीं तो आहारक चतुष्क लेना पड़ेगा, उसके बाद नहीं 93 का हिसाब लगाते
हैं। 93 का हिसाब लगाते हैं, सो 90 का होगा मिथ्यात्व में।
मिथ्यात्व में 90 का नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा
90 का एक स्थान हो जाएगा, पर उसमें जो उद्वेलना रूप प्रकृति जो 8,
देखो देखो अभी उसको छोड़ो, केवल नाम नाम के सत्व स्थान बताना। आप टोटल 93 की सत्ता किसी के होती है कि नहीं होती?
होती है ना, नहीं
तीर्थंकर की भी और आहारक की भी, किसके होती है वो छोड़ दो, होती है ना एट ए टाइम, वो एट ए टाइम सत्ता वाला मिथ्या तो में नहीं आ रहा है, 93 वाला
92 वाला,
पर किसी को तीर्थंकर की सत्ता है, किसी को आहारक की, ऐसा भी जीव है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर समय दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति बांधा है और मुनि हुए है, तो उसके आहारक की भी सत्ता आ गई ना।
93 वाला एक
तो 93 वाला एक है,
92 वाला होगा, 91 वाला अभी होगा।
लोगों को समझाओ, 93 तो पूरी सत्ता वाले हैं, सभी जो प्रकृति है उसको 93 वाला है,
तीर्थंकर भी ना।
अभी 91 वाला कौन सा होगा, 93 के बाद 92 वाला लेना,
आहारक द्विक के साथ,
आहारक की है और तीर्थंकर का नहीं है,
92 का हो जाएगा।
ये 92 का भी लोग लिख रहे हैं, अभी 91 का कैसे होगा,
तीर्थंकर और आहारक द्विक को छोड़ के,
तीर्थंकर है और आहारक द्विक नहीं है,
तो 91
वाला। 93 में से हमने दो आहारक निकाले तो 91 का हुआ, और जिसके तीर्थंकर भी नहीं और आहारक भी नहीं है
90
वो 90 वाला है,
पीछे हाथ कम कर दो।
तो देखो ये कैसे 93 92 91 90, ये तो चार स्थान ये हो गए,
पीछे 88 वाला हो जाएगा। अभी द्विक के बिना
कब होगा,
नहीं मनुष्य द्विक का उद्वेलना,
देखो पहले में पहले उद्वेलना की अपेक्षा देखते हैं, तो देव द्विक की उद्वेलना हो जाएगी तब 88 वाला होगा,
पीछे चार कम कर दो,
क्योंकि जो 93 92 वगैरह वाले है
पहले देव द्विक
वो जाएगा तो देव द्विक जाता है,
पीछे चार जाएगा।
जरा सुनो शांति से, 90 में से हम कम कर रहे हैं
88,
तो 90 में से देव द्विक पहले जाएगा तो 88 हो गए, फिर नरक चतुष्क जाएंगे
84,
ये चार एक साथ जाएंगे, 88 में से चार गए
84,
तो 84 हो गए,
पीछे मनुष्य द्विक
उद्वेल ना करता है,
पीछे मनुष्य द्विक जाएगा,
अभी मनुष्य द्विक जाएगा, दो जाएंगे
82।
अभी नाम कर्म देख लेना, अकेला मनुष्य गति के साथ उच्च गोत्र भी जाता है, परंतु हमें नाम कर्म के देखना है, इसलिए
82
वो गोत्र कर्म जुदा है, तो उद्वेलना की अपेक्षा हमने देखा 88 है, 84 है, 82 है, यहाँ तक ही उद्वेलना के स्थान। अब क्षपणा की अपेक्षा देखो,
77 वाला हो जाएगा पहले।
अब देखो क्षपणा में कितने प्रकृतियों की क्षपणा होती है, नाम कर्म की कितने की कहाँ होती है वो बोलो,
13 की।
हाँ देखो 90 गुण स्थान में, 90 गुण स्थान में हमने देखा ना, जो 8 कषाय के पहले भी 16 की जो क्षपणा होती है, 16 कौन सी है, दर्शन मुनि की 3, स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला,
13 नाम कर्म,
और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां जाती है वहां पर, वहां उसमें नरक द्विक भी है, तिर्यंच द्विक भी है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तिंद्रिय चतुर इंद्रिय जाति भी है, आतप उद्योत भी है, सूक्ष्म साधारण। हाँ वो तो उद्वेलना की अपेक्षा, यहाँ क्षय की अपेक्षा, तो यहाँ 13 एट ए टाइम जाएगी,
77
तो 93 में से 13 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। आप एकदम से
नहीं, 90 में, अच्छा,
हमने सत्ता कैसे चार ली थी, 93 92 91 और 90, हर एक में से 13-13 माइनस करो तो चार स्थान वो हो जाएंगे। 93 में से 13 गए तो 80 वाला स्थान हुआ, 92 में से 13 गए तो 79 वाला स्थान हुआ, 91 में से 13 गए तो 78 वाला हुआ, और 90 जो है ना 90 में से 13 गए तो 77 वाला 77 का हुई। ये चार स्थान 90 गुण स्थान में एक सपना होने पर होते हैं, समझ में आती है बात? यानी कैसे हुए 80, 79, 78 और 77
पीछे 13।
अभी बोलो,
अभी 13
सत्ता के स्थान हमने पूछे,
तीन निकाल लिए तो एक मिनट है, 13 में से 3 निकालो तो 10 बाकी नाम कर बाकी रह जाएगी, तो 67 वाला
देखो तीर्थंकर वाले के 10 रहेगी और जो तीर्थंकर प्रकृति बिना है उसके 9 रहेगी सत्ता में,
तो 67
और वो अयोगी के उपांत समय तक सत्ता बनी रहती है उनकी सबकी,
67 और 66 बराबर नहीं
ना,
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं
70 जाएगी, 80 थी ना,
हाँ
80 थी और 10 रह गई,
नहीं पर 80 वाला लेना है,
80 वाला भी है, 77 वाला है, हर एक में से कितने निकालना है,
80 में से
जो तीर्थंकर वाला है उसमें से 10 निकालो, सॉरी 10 रखो तो 80 थे उसमें से 70 गए तो 10
रह गए और 9 रह जाएंगे,
अभी 79 में से 10 गए
नौ रह जाएगा,
77 वाले में तो हमने पहले ही नहीं लिए थे, यानी वहाँ तीर्थंकर था और वो आहारक नहीं था, उसके भी उतने ही 10 ही रह जाएंगे, फिर से 80 वाला 10 का हो जाता है, सत्व स्थान अयोगी के द्विचरम समय में सत्ता में से नाश तब हो जाता है, अयोगी के द्विचरम समय तक उनकी सत्ता है, वो सत्व स्थान है उसका, यानी चरम समय में 10 की सत्ता रह जाती है, यानी तीर्थंकर प्रकृति वाले को 10 की सत्ता, यानी आहारक हो या नहीं हो वो तो क्षय हो जाने वाला है, इसलिए दोनों समान हो, तीर्थंकर की सत्ता वाले को 10 और बिना तीर्थंकर वाले के 9, उसमें आहारक था या नहीं था उससे कुछ मतलब नहीं है। तो यह संक्रम स्थानों की प्ररूपना सत्कर्म स्थानों के समान है, दूसरे भाग में है स्थान ये वहां नहीं आने वालों को चाट नहीं मिलने वाला है नहीं वो सत्व स्थान वो नहीं थे, देखो देखो अभी यहाँ तो होगी ना, जरा वो जिसका कहा ना उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम प्रशस्त प्रकृति उनका कहाँ तक बताया, जरा अनुभाग संक्रम में पीछे चलना, जरा स्वामित्व निकालना है उत्कृष्ट का मुझे, 380 के आसपास होगा कहीं पे, नहीं उसके भी पहले, नहीं 378 पर है कुछ, शैव केवली के अंतिम समय तक रहता है। उत्कृष्ट की भी बात है, परंतु संक्रमण कहाँ तक है, तो स्थान है तो संक्रमण होगा कि नहीं होगा? उन्हें अनुभाग संक्रमण कौन से गुण स्थान तक होता है? यानी बाद में तो उदीर्णा वगैरह रुक जाती है ना, तो संक्रमण भी रुक जाता है क्या? अनुभाग का मुझे कहना है, अनुभाग होता है। एक मिनट, जरा उसमें माइक में बोलो।
सपक श्रेणी चढ़ेगा और जो परभवी की जो बंद करेगा अंत में आठवें, उसका तो उत्कृष्ट अनुभव अच्छा अनुत्कृष्ट भी हो सकता है।
नहीं, स्वामित्व में ये उत्कृष्ट जगन्य की भी बात है, परंतु संक्रमण कहाँ तक होता है ऐसी बात नहीं अलग से बताई ना। साता का कहां तक बताया था? सहयोगी के ही लिया ना, सहयोग केवली तक ही लिया, ठीक है, मैंने सहयोग केवली तक ही उसको संक्रमण ले लिया है। हाँ, संक्रम स्थानों की, सत्कर्म स्थानों के, वो तो सभी कर्मों के इन जनरल बात की उन्होंने। नहीं नहीं, सहयोगी तक ही रखना पड़ेगा। नहीं, सत्व स्थान में कहेंगे हम उसको। हाँ, अभी आगे बढ़ते। अभी तक हमने क्या क्या देखा था? प्रकृति संक्रमण देखा, फिर स्थिति संक्रमण देखा, अनुभाग संक्रमण, अभी प्रदेश संक्रमण देखना। देखो, प्रदेश संक्रम में अर्थपद, जो प्रदेशाग्र अन्य प्रकृति में संक्रांत किया जाता है उसका नाम प्रदेश संक्रम है। यानी कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, अन्य प्रकृति रूप होते हैं, उसको यहाँ प्रदेश संक्रमण कहें। इस अर्थपद के अनुसार मूल प्रकृति संक्रम नहीं है, क्योंकि कोई भी एक मूल प्रकृति अन्य प्रकृति रूप नहीं होती, नहीं आयु में होता है। उत्तर प्रकृति संक्रम प्रकरण प्राप्त है, यानी मूल में तो होता नहीं है, तो अभी इसमें क्या कहेंगे हम, उत्तर प्रकृति में बताएंगे। उत्तर प्रकृति संक्रम पांच प्रकार का है। ये आपको संक्रमण देखना था ना, ये यहाँ पर है। पांच कौन कौन से नाम है देखो, उद्वेलन संक्रमण, विध्यात संक्रमण, अध प्रवृत्त संक्रम, गुण संक्रम और सर्व संक्रम। यानी यहाँ कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसके लिए जो भागहार होता है ना, सत्ता में कितना पड़ा है उस कौन सी संख्या से भाग देंगे, वो भागहार की जो संख्या है उसके अनुसार ये संक्रमण के नाम पड़े हैं। यानी ये सब जो कहते हैं प्रदेश संक्रमण की अपेक्षा ये नाम पड़े हैं। आगे पढ़ते देखो, ये एक नंबर के ऊपर की गाथा है ना, उसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पहली लाइन शुरू होती 408 पेज पर, प्राकृत में ऊपर ऊपर, प्राकृत में ऊपर पेज नंबर 408। आप कहाँ पढ़ रहे? 408 पेज, उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। उवेलन विच्छादो अधाप मत्तो गुणो य सौवोय संकमयि जैहिकम्मम परिणाम वशेन जीवाणम। उसका अर्थ देखते, परिणाम वश, परिणाम वसेन जीवाणम, जिनके द्वारा जीवों का कर्म संक्रमण को प्राप्त होता है वे संक्रम पांच है। उद्वेलन संक्रम, विध्यात संक्रम, अध प्रवृत्त संक्रम, गुण संक्रम और सर्व संक्रम। कौन प्रकृतियां कितने संक्रमणों के द्वारा संक्रमण को प्राप्त होती है, यह जतलाने के लिए की जाने वाली प्ररूपणा में यह गाथा है। यानी कौन कौन सी प्रकृतियों में कौन कौन से संक्रमण संभव है। बंधे अधाप मत्तो विच्छाद अबंध अपमत्तंतो गुणसंकमो दुहितो पयडीयम अपसत्थानम। ये जो गाथाओं के नंबर है ना, ऊपर की गाथा को दो का एक करना और नीचे चार का दो करना, इसका अर्थ देखते हैं। ये कर्मकांड में भी यह गाथा आती है। देखो उसका अर्थ, बंध के होने पर अध प्रवृत्त संक्रम होता है, इसके लिए कोई अपवाद है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को छोड़कर सभी में अध प्रवृत्त संक्रम होता है। नहीं, पर ये बिना बंधने वाली दर्शन मुनि की दो है, उसमें भी अध प्रवृत्त संक्रम होता है। तीनों में नहीं, मिथ्यात्व में कभी नहीं होता। मिथ्यात्व बंधने वाली है, उसमें अध प्रवृत्त संक्रमण होता नहीं है, वो बताएंगे आगे। वो उसका कौन भागाहार का प्रमाण, बस इतना ही। संक्रमण तो संक्रमण होता है, उसमें कोई बात नहीं है। कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसका नाम है अध प्रवृत्त संक्रमण। देखो बंध के होने पर अध प्रवृत्त संक्रमण, ये तो इन जनरल कुछ बातें, अपन दर्शन मुनि के लिए कुछ अलग बातें लागू होती है। विद्या संक्रम अबंध अवस्था में अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत होता है। इसे सम्यक तो सम्यक मोहनी का तो चौथे से सातवें तक हो जाता है, परंतु ये अबंध अवस्था में ये दर्शन मोहनी की बात ही छोड़ो, अन्य प्रकृतियों में भी विद्या संक्रमण कब होगा? जब बंध नहीं हो रहा है और अप्रमत्त गुणस्थान तक होगा। बंधने वाले में होता है ना, पर वो विद्या संक्रमण का अर्थ होता है अभी वो स्लो डाउन है उसका, यानी अधिक मात्रा में संक्रमण नहीं हो रहा है, उसको विद्यात में ले लेते हैं। यहां से अर्थात अप्रमत्त गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों में बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण और सर्व संक्रम भी होता है। बंध रहित अप्रशस्त प्रकृति जैसे अभी हमने देखा था, वो तो क्या हाथ में माइक ले ही रखो।
अप्रशस्त
प्रकृतियों के जिनके बंध विच्छित्ति हुई है, हाँ, उनका गुण संक्रमण होगा, बंधने वाले में होगा। अभी ये तो केवल एक गाथा बताई, उसका अर्थ बताएंगे। बंधे अधापवत्तों का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाते हैं कि जिन प्रकृतियों का बंध संभव है वहां उन प्रकृतियों के बंध के होने पर और उसके न होने पर भी अध प्रवृत्त संक्रम होता है। यह नियम बंध प्रकृतियों के लिए है, अबंध प्रकृतियों के लिए नहीं है। यानी बंध पॉसिबल है फिर भी बंध नहीं हो रहा है तो भी उसका अध प्रवृत्त संक्रमण होगा, क्योंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व इन दो अबंध प्रकृतियों में भी अध प्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है। यानी ये जो कौन सा नियम था, बंध, यानी जिनका बंध होता है उन बंध के होने पर अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, परंतु सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व बंधने वाली नहीं है प्रकृतियां, परंतु उनमें अध प्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है। यानी दर्शन मोहनी की बात ही कुछ अलग है, ये जो नियम है वो सभी में लागू होते हैं। विज्ञाद अबंधे का अर्थ करते हुए कहते हैं जिन प्रकृतियों का जहां नियम से बंध संभव नहीं है वहां उन प्रकृतियों का विद्या संक्रम होता है। यह भी नियम मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक ही ध्रुव स्वरूप से है, यानी वहां तक ही उसका विद्या संक्रमण पाया जाएगा। गुण संकमोदु एत्तो अर्थात अप्रमत्त गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों में बंध रहित प्रकृतियों का गुण संक्रम और संग्रह संक्रम भी होता है।
चौथे गुणस्थान से जो गुण संक्रमण लेते हैं वो बंध वाली प्रकृति में होगा।
चौथे गुणस्थान में किसका गुण संक्रमण होता है?
गुण श्रेणी बनती है तभी गुण गुणित प्रमाण में संक्रमण होता है ना।
वो तो मिथ्यात्व का
मिथ्यात्व होता है,
वो तो उपशम सम्यक्त्व में होता है और वो भी थोड़े शुरुआत में होता है।
हाँ।
ये जनरल बात होती है और कुछ अलग से बात मैंने बताई ना, दर्शन मुनि के बाद छोड़ दो, बाकी किसमें होता है गुण संक्रमण? अब जो है ना अनंतानंद की विसंजना है, जो अन्य जो बातें हैं, दर्शन मौखिक सपना है, उसमें जो बात है वो अलग से लागू होगी, पर वहाँ करण परिणाम होते हैं इसलिए वो बात अलग है, बिना करण परिणाम के वो नहीं होगा। शंका, सर्वसंक्रम भी होता है यह कहाँ से जाना जाता है? समाधान, यह उपर्युक्त गाथा में प्रयुक्त तू शब्द से जाना जाता है। गुण संक्रमो दू यानी वह भी होता है, यानी वह सर्वसंक्रम भी होता है, यानी सर्वसंक्रमण कब होगा? जो प्रकृति नष्ट हो जाती है, पूरे सर्वसंक्रमण होकर वो नष्ट हो जाती है। केवल गुणस्थान में ये बात नहीं लगाना, क्योंकि अभी हम देखते जो उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां होती है, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व, पहले तो उद्वेलना संक्रमण हो रहा था लास्ट लास्ट तक, अंतिम जो बाकी रह गया उसका सर्व संक्रमण हो जाएगा। पहले गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, क्योंकि अंतिम कांडक है तो गुणित प्रमाण में वो संक्रमित होते होते सर्व संक्रमण हो जाएगा। यानी ये तो इन जनरल एक नियम होता है और कहीं स्पेसिफिकली अलग बताएंगे, उसकी भी बात बताएंगे। यह प्ररूपणा अपसत्थानम अर्थात अप्रशस्त प्रकृतियों की गई है, न कि प्रशस्त प्रकृतियों की, क्योंकि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में भी बंध रहित प्रशस्त प्रकृतियों का अधः प्रवृत्त संक्रम देखा जाता है। क्या कहा? ये अप्रशस्त प्रकृतियों में ये बात लगाई, तो उपशम और क्षपक श्रेणी में बंध रहित ऐसी जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उसका भी अधः प्रवृत्त संक्रमण देखा जाता है। ये प्रकृतियां इतने भागहारों से संक्रमण को प्राप्त होती है यह बतलाने के लिए यह गाथा है। यानी कौन कौन सी प्रकृतियों का कौन सा संक्रमण है वो बताएंगे, अभी ऊपर गाथा पढ़ेंगे। तीन नंबर की गाथा ऊपर है, देखो, उगुदालती सत्तय विषम एगे गवारतीय चौकम एवं च दुदुगति यतिय चदुपण दुगति गदुगम च बोद्धवम। देखो 39 30 7 20 1 1 कमा 12 और 3 चतुष्क यानी 3 बार 4 इन प्रकृतियों के क्रम से एक यानी 39 वाले का एक, 4 30 वाले का 4 ऐसा समझना, 2 3 3 4 5 2 3 और 2 ये भागहार जानने चाहिए, ये भागहार जानने चाहिए नहीं, उनमें ये संक्रमण होते हैं। क्योंकि जो भागहार के हमने देखा था ना, एक नंबर दो नंबर हमने डाले थे, वैसे इनमें ये भागहार होते हैं। अब इसको बताएंगे यहाँ पर, इस गाथा में कही हुई गई प्रकृतियों और भागहारों की यह संदृष्टि है। जो ऊपर जो लिखा था ना प्राकृत में वही बात है, देखो ऊपर 30 लिखा है उसको 39 करो, लक्ष्मी उसमें 39 लिखा है क्या 30 लिखा है हिंदी में? और हिंदी में 30 का 39 करो। देखो प्रकृति 39 है, उनमें एक ही भागहार है, बाकी 30 प्रकृतियों में 4 भागहार है, 7 प्रकृतियों में 2 भागहार है, वो कौन सी है, किस में कौन से भागहार है वो बताएंगे। 20 प्रकृतियों में 3 भागहार है, एक मिथ्यात्व में 3 है, एक सम्यक प्रकृति में 4 है, 12 में 5 है, फिर 4 में 2 है, 4 में 3 है, 4 में 2 है। अभी केवल वो पहले तो अंक लिखे हैं, फिर वो 39 प्रकृतियां कौन सी है, 30 कौन सी है वो बताएंगे। इसे इस प्रकार से स्थापित करके इस गाथा का अर्थ कहते हैं। यथा 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 4 को ही लिया हम, 7 वेदनिया संज्वलन लोभ, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुरस संस्थान, प्रशस्त वर्ण, रसगंध स्पर्श, अगुर लघु, परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति, निर्माण और 5 अंतराय। इन 39 प्रकृतियों का एक अध प्रवृत्त संक्रम ही होता है। देखो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और संज्वलन लोभ को छोड़कर बाकी सभी प्रशस्त प्रकृतियां हैं, है ना? क्या कहते हैं, अंतराय की वो भी छोड़ो, फिर भी इन सब में अध प्रवृत्त संक्रमण ही होता है, क्योंकि 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय का मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय तक बंध ही है। अभी पहले देखो लो, ये बंध वाले जो बात थी ना, जिनका बंध संभव है उसके बंध होने पर अध प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। तो इनका बंध है कहाँ तक, 10वें तक, तो उसका अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। इनमें अध प्रवृत्त संक्रम को छोड़कर अन्य संक्रम नहीं होता। बंध विच्छित्ति के हो जाने पर उनका संक्रमण नहीं होता, क्योंकि प्रतिग्रह प्रकृतियां संक्रांत होती है। प्रतिग्रह इनमें विवक्षित प्रकृतियां संक्रांत होती है, सॉरी प्रतिग्रह प्रकृतियों का यहाँ अभाव है। एक होती है संक्रमित होने वाली प्रकृतियां, किसमें संक्रमित होगी, जिसका बंध है उसमें। तो 10वें गुणस्थान में संक्रमण क्यों नहीं है? अभी ज्ञानावरण का बंध ही 10वें तक है, उसके बाद में नहीं है, ख्याल में? तो इसमें किसमें संक्रमित होगी, ये उसका कहना है। शंका, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर संस्थान, प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुर लघु, परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिरादि छ और निर्माण, इनकी बंध विच्छित्ति हो जाने पर विद्या तथा गुण संक्रमण क्यों नहीं होता? क्योंकि 8वें गुणस्थान तक ही बंध है, वहां क्या बताता, बंधने वाली और बंध से भी रहित हो गई है, तो उनमें अन्य संक्रमण क्यों नहीं है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि वे प्रशस्त प्रकृतियां हैं। और वो नहीं बंधने वाली की बात जो थी गुण संक्रमण वाला, वो अप्रशस्त प्रकृतियों में थी, ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो मेरा यह प्रश्न, किसमें संक्रमित होगी, प्रेरणा बिना आप बताना। अभी ये सब पूरी लिस्ट बताइए, उनका बंध विच्छित्ति कब हो जाती है? 8वें में। तो अभी उसके बाद भी वो उसका अध प्रवृत्त संक्रमण चल रहा है, किसमें संक्रमित होगा? यशस कीर्ति अकेली बंध रही है, हाँ, गुण संक्रमण नहीं हो रहा है, अध प्रवृत्त संक्रमण यानी थोड़ा है प्रमाण, फिर भी वो यश कीर्ति में बंधने वाली में जाएगी। अपकर्षण काय का ये सारे नाम किस अपेक्षा से है? अभी प्रदेश की चर्चा करनी, इस प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप हो रहे, एक्चुअली वो प्रकृति संक्रम में कितने प्रदेश जा रहे उसकी बात है। यानी अप्रशस्त प्रकृतियां जब बंध रहित होती है श्रेणी में, तब उनका गुण संक्रमण होगा और प्रशस्त का नहीं होगा।
तो वर्ण गंधर स्पर्श वो अप्रशस्त भी बन रहा है।
यहाँ क्या लिखा है, पढ़ा क्या अभी हमने?
नहीं, वो तो प्रशस्त की बात होगी। हाँ,
तो प्रशस्त के लिए लागू होगा। संज्वलन लोभ का नहीं बंधने वाली का, अभी यहाँ श्रेणी में वो नहीं बंध रही है अप्रशस्त प्रकृतियां, तो उनका वहां बंधने वाली में संक्रमण होगा। अभी उसके बाद बाद में, अभी पहले तो अध प्रवृत्ति की बात चल रही है ना, इसको ठीक से समझो तो फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि उसका अन्य क्या नहीं होता कि वो चर्चा करेंगे तो ये बात छूट जाएगी। अभी अध प्रवृत्ति पक्का करेंगे पहले। हाँ, तो ये 39 प्रकृतियां हमने देखी थी। देखो उसमें 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और ये तो 5 अंतरा ये तो लिया, उसका तो अध प्रवृत्ति संक्रमण ही है क्योंकि वहां तक तो बनती रहती है, बंध रहित नहीं होती है। और दूसरी बात, ऊपर क्यों नहीं संक्रमण, क्योंकि किसमें उसका संक्रमण होगा, बंध ही रुकता है, बंधने वाले कोई 11वें में है ही नहीं है, 12वें में ही नहीं, तो इसलिए उसका संक्रमण नहीं है। अब हमने जो नाम कर्म की प्रशस्त प्रकृतियां देखी, वो बंध विच्छित भले हो जाए परंतु ये प्रशस्त होने से, बंध विच्छित हो जाने पर भी इसका अध प्रवृत्त संक्रमण ही होता रहता है। अब संज्वलन लोभ की बात बता रहे, पढ़िए ना आगे। संज्वलन लोभ का एक अध प्रवृत्त संक्रम ही होता है क्योंकि बंध के होने की अवस्था में ही अनुपूर्वी संक्रम, यानी संज्वलन क्रोध का, संज्वलन मान आदि में, संज्वलन मान का, संज्वलन माया आदि में इत्यादि वश उनका संक्रम नष्ट हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं, संज्वलन लोभ का बंध कहाँ तक है? 9वें के अंत तक है। परंतु जब वो 9वें गुणस्थान में अंतरकरण किया था, उसके इमीडिएट बाद आपको अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ था, यानी विशिष्ट क्रम से संक्रमण होगा। अभी लोभ का किसी में भी संक्रमण नहीं होगा। पहले जहां तक चारों का बंध था वहां चारों आपस में संक्रमित होती थी, लोभ भी क्रोध वगैरह में और क्रोध भी मान माया सब सब में चारों आपस में संक्रमित होती थी। अनुपूर्वी संक्रमण से भी क्रोध का मान में, मान का माया, माया का लोभ में ही आएगा। अभी लोभ का संक्रमण रुक गया है वहां पर, यानी जब से अनुपूर्वी संक्रमण हुआ था तो फिर लोभ का संक्रमण वहीं पर समाप्त हो गया था। देखो क्या कहा, बंध के होने की अवस्था में ही अनुपूर्वी संक्रम वश उनका संक्रम नष्ट हो जाता है।
ऊपर जो 39 प्रकृति बताई उसमें संज्वलन लोभ लिया है,
इसीलिए उसकी चर्चा चल रही है। उसमें अध प्रवृत्त क्यों हो रहा है उसी की तो चर्चा चल रही है। उसमें एकमात्र अध प्रवृत्त संक्रमण ही है ये बात बता रहे हैं। शंका, अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, ये सब में अध प्रवृत्त संक्रमण ही होगा। हाँ, यानी इन प्रकृतियों में तो अध प्रवृत्तकरण हो रहा है। अभी अन्य कुछ में जो सभी पांचों संक्रमण होते वो प्रकृतियां बताएंगे, अलग अलग से बताएंगे। हाँ, अभी तो यश में जाएगी, पर पहले गुणस्थान से जो हो रही थी, हाँ जब तक अभी उसको बनती है तब तक उसका अध प्रवृत्त संक्रमण होगा उसमें। परंतु जहाँ वो अन्य पहले गुणस्थान में भी तो ये बनती थी कि नहीं बनती थी, सभी पहले गुणस्थान से लेकर अध प्रवृत्त संक्रमण ही है। इन प्रकृतियों में अध प्रवृत्त संक्रमण ही है, वहां अधिक बनती थी उसमें आपस में संक्रमण होगा उसका, जो बंधने वाले में होगा। देखो शंका, इन प्रकृतियों का सर्वसंक्रमण क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं क्योंकि अन्य प्रकृतियों में क्षेपण करके इनका विनाश नहीं होता, क्योंकि संज्वलन लोभ अपने रूप से उदय में आकर ही नष्ट हो जाता है, और बाकी क्रोध मान माया कैसे अन्य में संक्रमित होकर नष्ट होते हैं। जो अन्य में संक्रमित होकर नष्ट हो गए उनका संक्रमण होगा, सर्व संक्रमण। एक पहला ग्रुप 39 का समझ में है ना, उसमें कौन सा अधप्रवृत्त संक्रमण ही है। अब ये दूसरा ग्रुप बता रहे, देखो संदृष्टि में 30 प्रकृतियों में 4 संक्रमण बताए अलग अलग, वो उसकी बात अभी करेंगे। स्त्यांग वृद्धि 3, 12 कषाय, स्त्री वेद नपुसक वेद, अरति शोक तिर्यक गति, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, तिर्यक गति प्रायगण पूर्वी, आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण शरीर, इस तीन इन 30 प्रकृतियों के उद्वेलन के बिना 4 संक्रमण होते हैं। यानी यहाँ वो सर्व संक्रमण गुण संक्रमण भी होगा उनका, क्योंकि हमने देखा ना ये जो 13 प्रकृतियों का क्षय होता है और वो स्थान वृद्धि सकट 3, 16 इनके तो नाम इसमें है ही है, और वो 12 कषाय को भी इसमें ले लिया है, श्रीवेद नपुसक वेद को भी लिया है, अरति शोक को भी लिया। तो कहते हैं अभी आगे पढ़ेंगे, यथा स्त्यान वृद्धि त्रिक स्त्रीवेद तिर्यंज गति तिर गत्यानुपूर्वी उद्योत और अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्या दृष्टि से लेकर सासादन सम्यक दृष्टि तक अधः प्रवृत्त संक्रम होता है, क्योंकि वहां इनका बंध पाया जाता है। वो बंधने वाली अप्रशस्त प्रकृतियों में अधः प्रवृत्त होता है बताया था पहले, याद है आपको। अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट होने वाला है विषय, क्योंकि याद तो रहता नहीं है कौन सी में क्या क्या संक्रमण होते हैं, क्योंकि देखो ये सब पहले दो गुण स्थानों में बंधने वाली है। ये कैसी प्रकृतियां लिए, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली लिए, तो पहले और दूसरे गुणस्थान में इनका अधप्रवृत्त संक्रमण है। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक उनका विध्यात संक्रमण होता है, क्योंकि हमने देखा ना अभी सातवें तक नहीं बंधने वाले में विध्यात संक्रमण होता है, क्योंकि वहां उनके बंध का अभाव है। अपूर्वकरण क्षपक के प्रथम समय से लेकर अपने अपने अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक उनका गुण संक्रमण होता है। हमने देखा था श्रेणी में नहीं बंधने वालों का, अभी यहां उनका जो हमने देखा था ना उसकी कांडक घात वगैरह होते रहेंगे और उनके तो गुण संक्रमण होगा उनमें। अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। देखो एक एक कांडक होता है तो पहले समय में जितने परमाणु संक्रमित हुए, दूसरे समय में असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, अब सब मिलकर भी असंख्यात गुना अंतिम फाली के होते हैं। हाँ तो कहते अभी दूसरा कांडक शुरू हुआ उसमें भी, यानी वो ये गुण संक्रमण तो चलता रहेगा कब तक, अंतिम जो है ना अंतिम का हाँ द्वितीय चरण, और अंतिम फाली पूरा का पूरा संक्रमित होकर नष्ट होगा, तो वहां उसको सर्व संक्रमण कहने में आएगा। यानी उसी में कहां तक ये स्वामित्व भी लिखा है, यानी ये जो प्रकृतियां हैं जो दूसरे गुणस्थान में बंधे विच्छित्ति होने वाली, इसमें से कुछ प्रकृतियां ली है ना, स्त्यान तीर्य गति वगैरह वगैरह, तो उसके पहले दो गुणस्थानों में अध प्रवृत्त है क्योंकि उनका बंध पाया जाता है। जहां बंध ने ऐसे सातवें तक विद्या संक्रमण है, आठवें क्षपक से लेकर द्विचरम फाली तक अंतिम कांड के द्विचरम तक गुण संक्रमण, और अंतिम फाली का सर्व संक्रमण। अब हमने 30 में से यहाँ कितने देखे, 11 देखे। अब नीचे नपुसक वेद, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म और साधारण शरीर का ये नौ प्रकृतियां हैं। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अधप्रवृत्त संक्रम होता है क्योंकि इनकी बिंदु विच्छित पहले गुणस्थान में है क्योंकि वहां पर इनका बंध पाया जाता है यानी वहां अधप्रवृत्त संक्रमण जहां बंध है ऐसे अप्रशस्त प्रकृतियों का अधप्रवृत्त संक्रमण। अभी सासादन से लेकर अप्रमत्त संयत तक उनका विद्या संक्रम होता है क्योंकि अप्रशस्तता के होने पर वहां बंध का अभाव है। समझ में आते हैं बंध नहीं है और सातवें गुणस्थान तक उनका विद्या संक्रमण पाया जाएगा। एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय आतप स्थावर सूक्ष्म और साधारण इनका देव व नारक मिथ्या दृष्टियों में विद्या संक्रमण होता है क्योंकि उनके इनका बंध नहीं होता। जहाँ नहीं बंध होता वहां ले लेना यानी वहां मिथ्यात्व गुणस्थान में होने पर भी विद्या संक्रमण पाया जाता है ये कहना है उनको। विशेष इतना है कि एकेंद्रिय आतप और स्थावर इनके ईशान कल्प तक के देव अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा संक्रमक है यानी पहले गुणस्थान में उनका अधप्रवृत्त संक्रमक होगा क्योंकि इनमें उनका बंध देखा जाता है। आया आपके प्रश्न का उत्तर। अपूर्व करण के प्रथम समय से लेकर अंतिम स्थिति कांड की द्विचरम फाली तक इन प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है क्योंकि अप्रशस्तता के होने पर उनके बंध का अभाव है। इनकी अंतिम फाली का सर्वसंक्रम होता है क्योंकि उसका विनाश निक्षेप पूर्वक होता है यानी वो संक्रमित होकर वो नष्ट हो जाती है। देखो पहले हमने दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाले देखी, अब पहले गुणस्थान में होने वाली देखी है। इनमें से जो कुछ प्रकृतियां देव के भी बनती है ये देव और नार के नहीं बांधते हैं उनमें मिथ्या दृष्टि भी विद्या संक्रमण करता है। नहीं बंधने वाली है तो विद्या संक्रमण सातवें गुणस्थान तक और बाद में गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण चार भागर होने सिद्ध हो गए इनमें। अभी ऊपर हमने 11 देखी है 9 20 हो गए अभी। हाँ अभी अभी बताएंगे।
हाँ
नहीं नहीं अंतिम फाली कब तक होगी जब उसका क्षय होगा तब। नवे गुणस्थान में वो 16 का क्षय होता है ना तब तक उसकी बात है। वहां जाके उसका सर्व संक्रमण होगा। नपुसक वेद का अपने क्षपना में लेना अपने अपने क्षपना के अंतिम समय में सर्व संक्रमण है तब तक गुण संक्रमण है। देखो उपशम श्रेणी में क्या वो उपशमित हुआ अपने रूप से रहा और क्षपक श्रेणी में वो अन्य प्रकृति रूप से गुणित प्रमाण में संक्रमित होकर नष्ट हुआ है। वहां कुछ नहीं वो तो अपने रूप से ही रह रहा है। थोड़े परमाणु संक्रमित हो गए परंतु उपशमित हो गए नहीं। ये क्षपक श्रेणी में गुण संक्रमण और वो क्षपक श्रेणी में उपशम श्रेणी में भी होता है। कुछ तो संक्रमित हो गए और कुछ तो उपशमित हो गए वहां सब चलता है। संक्रमण भी है उपशम भी है सब चल रहा है मगर मैक्सिमम तो उपशमित रहेंगे। हाँ अभी नीचे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक अधप्रवृत्त संक्रम होता है। देखो अप्रत्याख्यानावरण का बंध कहाँ तक है चौथे तक है ना। हाँ तो मिथ्या दृष्टि से लेकर वहां तक अधप्रवृत्त संक्रमण होगा क्योंकि नहीं बंधने वाली बंधने वाली अप्रशस्त में अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। आगे अप्रमत्त संयत के अंतिम समय तक उनका विद्या संक्रमण होता है। अभी किसमें संक्रमित होगी वो हाँ बंधने वाली में, बंधने वाली में आगे आगे करते थे पांचवे छठे और सातवें में, हाँ उसका विद्या संक्रमण होगा। ऊपर अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम स्थिति कांड की द्विचरम फाली तक उनका गुण संक्रमण होता है। आगे यानी जो आठ कषाय नष्ट होते हैं ना, उसकी द्विचरम फाली तक, अंतिम कांड के द्विचरम फाली तक गुण संक्रमण होगा। इसका कारण सुगम है, यानी वो वहां बंधने वाली संज्वलन पुरुष वेद में संक्रमित हो जाएगी। अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है क्योंकि वह अन्य प्रकृति में प्रक्षिप्त होकर नष्ट होती है। अभी यहाँ का विषय वो कितना होता है, कौन सा संक्रम होता है, इतना ही, किस में जाती है, क्या क्या है, वो विषय जयधोला में हमने बहुत विस्तार से देखा था। अब प्रत्याख्यानावरण चतुष्क की प्ररूपणा अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के समान है, परंतु उसका अधप्रवृत्त संक्रमण कहाँ तक चलेगा, जब तक बंद है। विशेष इतना है कि संहिता संयुक्त गुणस्थान तक इनका अधप्रवृत्त संक्रम होता है। उसके बाद छठे और सातवें वाले को कौन सा होगा, विद्या संक्रम, और ऊपर गुण संक्रमण और सर्व संक्रम। समझ में, इस पुस्तक में और ज्यादा आसान है, जैसे कर्मकांड में इतना वो केवल प्रकृतियां और कौन कौन से संक्रमण होते इतना ही बताया, यहाँ एक्सप्लेन ये स्टेप बाय स्टेप वो ख्याल में आता है कि कौन सा कहाँ होना चाहिए। अरति और शोक का अभी कहाँ तक बनती है, छठे तक। मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक अधः प्रवृत्त संक्रम होता है क्योंकि उनमें इनका बंध पाया जाता है, यानी वहां तक बनती है, परंतु वो तो हर समय नहीं बन रही है, कभी हास्यरति भी बंधेगी, फिर भी नहीं बंधने की पोजीशन में भी उसका अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। वहां तक बनती है ना, जहां बंध विच्छित्ति होती है उसके पहले तक, यानी तब तक अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। अप्रमत्त संयत में इनका विद्या संक्रम होता है क्योंकि वहां इनका बंधन नहीं है। अब अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अपने स्थिति कांड की, अपने शब्द बताए ना, यानी उसके जहां नौ कषायों की क्षपना होती है वहां तक, बंध विच्छित हो चुकी छठे में, उनकी क्षपना नवे में होती है, तो अपने अंतिम कांड की द्विचरम फाली तक उनका गुण संक्रमण होता है क्योंकि वहां अप्रशस्तता होने पर उनका बंधन नहीं है। हाँ, नवे गुण स्थान में जहां छह नौ कषायों की क्षपना होती वहां तक उनकी अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। इसका कारण सुगम है, ये चार चार आठ और दो दहा, हाँ पहले वो तो अंतर करने के पहले हुई थी, आठ कषाय जो गए थे अंतरकरण के पूर्व में गए थे, ये अंतरकरण के पश्चात पहले तीन वेदों की क्षपना, पहले दो वेदों की क्षपना होगी, नपुसक वेद श्री वेद, और बाद में छह नौ कषाय और पुरुष वेद एट ए टाइम चालू हो गए, पर पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध बाद में एक समय कम दो अवली तक अधिक उसकी क्षपना होती है, इसलिए वहां पर इसका अंतिम कांडक वहां पर होगा। छह नौ कषायों की क्षपना के समय में हमने इतने बार वो लब्धिसार वगैरह पढ़ा, इसलिए इतनी क्लैरिटी हो रही, नहीं तो केवल पढ़ते गए तो नहीं ख्याल में आता इतना। हमने पहला ग्रुप 39 का देखा, दूसरा 30 का देखा, अब तीसरा ग्रुप सात प्रकृतियों का, निद्रा प्रचला तथा अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श और उपघात। ये उपघात भी आठवें में बंधे उच्छति, पर वो अप्रशस्त प्रकृति है। इनके अध प्रवृत्त संक्रम और गुण संक्रम, ये दो ही संक्रम होते हैं क्योंकि ये बनती कहां तक है, आठवें तक, तो इसलिए उसमें विद्या संक्रमण होने का सवाल नहीं है। विद्या संक्रमण कहां होता है, बंध रहित सातवें तक, पर ये सातवें क्या, सातवें तक तो बनती रहती, इसलिए उसमें विद्या संक्रमण ही नहीं है। देखो ये इस तरह से डिराइव करते तो अब ये आसान लगता है ना, तो अध प्रवृत्त और गुण संक्रमण। अब निद्रा प्रचला तो पहले भाग में बनती थी, जब बुंद रुक जाएगा तो उसका गुण संक्रमण हो जाएगा। यथा निद्रा और प्रजला का मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण के प्रथम सप्तम भाग तक, यानी सात भागों में से पहले भाग तक अध प्रवृत्त संक्रम होता है, क्योंकि यहाँ इनका बंध पाया जाता है। आगे सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय तक उनका गुण संक्रम होता है, क्योंकि यहाँ उनका बंध नहीं है। नहीं, उनकी निद्रा प्रजला की क्षपणा तो बारहवें में होती है, बारहवें के उपांत समय में होती है, और उसका अनुभाग संक्रमण हमने वहां देखा था। बारहवें में दो अवली और अवली का असंख्यात भाग कम था तब तक, परंतु ये प्रदेश संक्रमण नहीं है उनका। देखो देखो, गुण संक्रमण भी है या प्रकृति संक्रमण भी लेते हैं। अभी इसके बाद किसमें संक्रमित होगा, उसकी सत्ता है, परंतु प्रकृति संक्रमण अभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो यश कीर्ति बनती थी, सॉरी, निद्रा प्रजला के लिए या अप्रशस्त वर्णादि के लिए यश कीर्ति में उसका संक्रमण संभव था, बंधने वाली में संक्रमित होता है। अभी उसका बंध रुक गया यश कीर्ति का, तो इसलिए सत्ता होने पर भी, बारहवें गुणस्थान में सत्ता होने पर भी उसका संक्रमण नहीं होगा, इसलिए सर्व संक्रमण में इसको नहीं लिया। गुण संक्रमण हुआ, हाँ, तो उसका जो देखो वर्णादि जब सत्ता में, हाँ, उसके अंत समय में, वहां तक उसकी सत्ता है। उदीर्णा सहयोगी में रुक गई, सत्ता चौदहवें के पान वहां तक रहेगी, उपांत समय तक, बस बस दसवें तक संक्रमण है उसका। प्रकृति संक्रमण दसवें तक है ना, उसके आगे प्रकृति संक्रमण नहीं तो प्रदेश संक्रमण भी नहीं होगा। हाँ, सर्व संक्रमण इसमें नहीं है, हाँ, दो ही है। ये अप्रशस्त का पढ़ लेते हैं। अप्रशस्त वर्णादि चार का मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण के सात भागों में से छठे भाग तक इनका अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। आगे सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय तक उनका गुण संक्रम होता है। आगे उनका संक्रम नहीं है, क्योंकि बंध के न होने से उनकी प्रतिग्रह प्रकृतियों का अभाव है। प्रतिग्रहणी जिसमें संक्रमित होना है वो, उपघात की प्ररूपणा वर्ण चतुष्क के समान है, क्योंकि वो भी आठवें तक बनती है। प्रतिग्रह का अर्थ है जिसमें संक्रमित होना है। ये कौन सी प्रकृतियों में संक्रमण हो रहा है वो हमने देखा, वो संक्रमण किसमें करेगा, जिस प्रकृतियों में संक्रमित होते हैं उसको प्रतिग्रह कहते हैं। क्योंकि यहाँ तो यश कीर्ति एक ही बची है ना, और उसका बंध वहां तक ही है, क्योंकि संक्रमण में बंध की अपेक्षा है। ये दो वाक्य पढ़ना है अभी। इन निद्रा आदि सात प्रकृतियों का विद्यात संक्रमण नहीं होता, क्योंकि बंध रुककर सातवें तक इनका विद्यात होना चाहिए था, इनका बंध तो चल रहा है आठवें तक, इसलिए उसमें विद्यात संक्रमण ही नहीं है, क्योंकि क्षपक और उपशामक श्रेणियों में इनकी बंध विच्छित्ति होती है। इनका उद्वेलन संक्रम भी नहीं होता, क्योंकि वे उद्वेलन प्रकृतियों से भिन्न है। सर्व संक्रम भी उनका संभव नहीं, क्योंकि अन्य प्रकृतियों में प्रक्षिप्त होकर उनका विनाश नहीं होता, अन्य रूप से होकर विनाश होना का वो संभव नहीं है। अब यहीं रुकेंगे हम। हमने तीन ग्रुप्स तो देख लिए थे, चौथा ग्रुप अभी तो कल से बंद रहेगा। हम मिलेंगे 14 को, 14 तारीख सुबह, तब तक के लिए रजा। अब आने पर नंबर कितना, 14 नंबर है ना लेक्चर का। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोव। वाणी मस्तकनम सदा देत हो ढोल।